आपकी उम्र कम हो गई एक दिन। क्यों जल्दी वीरतासुर की तरह जल्दी जाना चाहती हो? हाँ जल्दी जाना चाहती भाई। अरे बाबा हरे कृष्ण नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामनि गौरात्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। इस्कान वृंदावन से श्री कृष्ण बलराम मंदिर प्रातः श्रीमद्भागवत के सत्संग में आप सबका स्वागत है। श्रीमद्भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 24वें अध्याय के ऊपर 24वें अध्याय के 5वें श्लोक के ऊपर आज श्रवण वर्णन करेंगे। 24वें अध्याय का शीर्ष है भगवान शंकर के द्वारा गाया गया गीत, ऐसा है ना, शिव जी द्वारा गाया की गाई स्तुति का गान, इसको कहते हैं रुद्र गीत। इसका जो जो शास्त्रिक नाम है रुद्र गीत। सो जो विषय अब हमारे चर्चा में है इस वक्त वो ये है कि भगवान के अवतार पृथ्वी महाराज अयोनिज हैं, वेण के शरीर के दोनों भुजाओं के मंथन से पृथ्वी और अर्ची का प्रकट्य हुआ। उस पृथ्वी के वंश का वर्णन हो रहा है, तो ये महत्वपूर्ण है कि भगवान के वंश का वर्णन हो रहा है। भगवान पृथ्वी के वंश का वर्णन हो रहा है। भगवान पृथ्वी के जो पुत्र है जिसका वर्णन यहां चल रहा है, उसका एक तो नाम है अंतर्धान और दूसरा नाम है अश्वजीत। जीत अश्व अश्वजीत दोनों जीत अश्व। तो जीत अश्व उसका नाम इसलिए है कि अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को जब इंद्र चुरा के जा रहा था तो वो इंद्र से छुड़ा के लाया और उसने इंद्र को नहीं मारा, इसलिए अंतर्ध्यान विद्या उसको प्राप्त हुई। अंतर्ध्यान का मतलब दिखने में नहीं आए, कहीं भी जाए कुछ भी करे दिखने में नहीं आए, पर अंतर्ध्यान जी बहुत बड़े महात्मा थे। भगवान के पुत्र बड़े महात्मा थे, उनको अधिक राज करने में आसक्ति नहीं थी, तो आगे चल के वो अपने पुत्र पोत्रों को राज देके चले गए। तो आज हम पृथ्वी वंश के इस महाराज अंतर्धान के दूसरे विवाह से उत्पन्न पुत्र और उसकी विशेष एक महिमा, और वो महिमा ये है कि अपराधी इंद्र को उसने दंड नहीं दिया। ये ऐसा ही किया जैसे इसने पिता ने किया था। पृथु महाराज 99 यज्ञ पूरे किए तब तो घोड़ा चुराया इंद्र ने, और वो भी कभी साधु का वेश कभी सन्यासी का वेश करके। अत्रि इस यज्ञ के पुरोहित थे। महाराज पृथु तो स्वयं आवेग में उठना चाह रहे थे, लेकिन यज्ञ में दीक्षित को ऐसे उठना उचित नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने कहा क्या करोगे 100 यज्ञ करके पृथु महाराज, आपकी वैसे भी महिमा ज्यादा है, आपको क्या करना है। और पृथु जी ने आज्ञा का पालन कर लिया, बड़ों की आज्ञा का पालन किया। तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए, भाई यज्ञ करते हैं विष्णु की प्रसन्नता, विष्णु तो प्रकट ही हो गए, और विष्णु इंद्र को साथ लाए और इंद्र को पृथ्वी महाराज ने क्षमा कर दिया। तो इंद्र बहुत प्रसन्न हुए, आलिंगन किया इंद्र को। तो यहां पृथ्वी का पुत्र भी इंद्र को नहीं मारा, तो ये परंपरा में जो एक अच्छे गुण थे पिता से वो पुत्र में आया, और उसका वर्णन यहां व्यास देव ने किया है कि उसने ये बहुत बड़ा एक ऐसा कार्य किया। और श्रील प्रभुपाद का पूरा तात्पर्य कि दोष भी दिखे अगर बड़े आदमी में, तो हम उस दोष को देखकर उस आदमी से घृणा न करें, ये हमारा काम नहीं है। ये एक बहुत अच्छा वैष्णव का गुण है, और आगे चल के ये वैष्णव वंश जो इसका होगा, इस वंश में बहुत ही प्रतापी शक्तिशाली प्रसिद्ध राजा बरहित होंगे। और ये कर्मकांडी हैं, और यज्ञ इतना किया कि जो घास रखते हैं कुश का पूर्व मुखी से पृथ्वी ढक गई, इतना घास, तो उसका नाम प्राचीन बरहित हो गया। प्राचीन का मतलब प्राचीन दिशा और बरहित का मतलब ढक दे, तो इतने यज्ञ किए तो उसका नाम प्राचीन बरहित हो गया। और बहुत शक्तिशाली राजा थे, उसका वर्णन आता है कि प्राचीन राजा अगर राज करता है तो कोई डाकू बदमाश कहां से आ सकते, उसके नाम से सब डरते थे, इतना बड़ा प्रतापशाली राजा था। और प्राचीन बरहित राजा के आगे वंश में, प्राचीन बरहित का उद्धार नारद जी ने आके किया, नारद जी ने उसका उद्धार किया, ये आगे वर्णन आएगा। प्राचीन बरहित के 10 पुत्र प्रचेता बहुत प्रसिद्ध हैं। उनको पिताजी ने कहा, और प्राचीन बरहित इतना शक्तिशाली हुआ कि उसको प्रजापति का पद मिला। उसने अपने पुत्रों को कहा, बेटा आप प्रजा को बढ़ाओ, लेकिन उससे पहले तपस्या करके अपने आप को भक्ति में निष्ठ कर लो, ज्ञान में निष्ठ कर लो, निपुण होके फिर राज संभालना। तो प्रचेता पिता की आज्ञा पालन करके अब सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र नहीं, कच्छ में एक स्थान है, उसको नारायण सरोवर कहते हैं। नहीं, प्रचेता भी इसी तरफ समुद्र की तरफ गए, नारायण सरोवर दक्ष के पुत्र गए थे, प्रचेताओं के पुत्र के पुत्र हमारे पोते। तो जब जा रहे थे प्रचेता रास्ते में, तो उनके पिता के आज्ञाकारी का गुण, 10 भाइयों में एक धर्म का गुण, के एक दूसरे के विपरीत नहीं थे, समान धर्मा। तो परम वैष्णव भगवान विष्णु प्रकट होके उनको एक गीत सुनाया और फिर उनको मंत्र बताया जिसका जप करके भगवान विष्णु को प्राप्त किया जाए। तो श्री प्रभुपाद ने वहां लिखा, प्रचेता रुद्र संप्रदाय के हैं। तो ये चार वैष्णव संप्रदाय में एक रुद्र संप्रदाय है, तो ये प्रचेता रुद्र संप्रदाय के दीक्षित शंकर जी से हो गए। तो इसका अर्थ है कि अब हम जो यहां पढ़ रहे हैं भगवान के वंश का वर्णन पढ़ रहे हैं, तो आइए इसमें श्लोक में जो शब्द हैं उनका रस आस्वादन करें। अंतरधानो नभस्वत्याम हवेर्धनाम अविन्दत येन्द्रम अश्वहर्तारम विद्वान अपि न जघन्निवान। अंतरधानो नभस्वत्याम हवेर्धानम अविन्दत येन्द्रम अश्वहर्तारम विद्वान अपि न जघन्निवान। अंतरधानो नभस्वत्याम हविर्धानम अविन्दत यदा इन्द्रम अश्वहर्तारम विद्वान अपि न जगिन्वान। पढ़िए जी। अंतरधानो नभस्वत्याम अवेर्नामम अवेन्दत नभस्वहर्तारम विद्वान अपि न जग्नवान। अंतरधानो नभस्वत्याम विद्वान अपि न जघन्वान। भवेर्दानाम् अवज्ञता नानपि न जग्निवान् मत अदालानो नवस्वत्यान् वैधानो अरविन्दता यदेन्द्रमश्वहर्तारम् विद्वानपि न जग्निमान्तर्धानो नभस्वत्याम् हविर्धान विन्दते यदेन्द्रमश्वहर्तारम् विद्वानपि न अन्तर्धानो नभस्वत्याम् नामम् अविन्दत अन्तर्धानो अन्तर्धान्य नभस्वत्याम् अपनी दूसरी पति नभस्वती के द्वारा हविर्धानम हविर्धान नाम का अविन्दत पुत्र प्राप्त किया। तो दो तो लाइन सीधी है कि अंतर्धान ने नभस्वती दूसरी पत्नी से एक पुत्र हविर्धान नाम का प्राप्त किया। इससे पहले पहली पत्नी का वर्णन हो चुका है जिसके तीन अग्नि के अवतार पुत्र थे, कल के श्लोक में पहले हुआ होगा। इसका मतलब दो पत्नियां, दूसरी पत्नी का नाम है तो पहली एक पत्नी और है तो दूसरी पत्नी। ये तो हुआ उसके वंश का वर्णन, अभी उनके गुण का वर्णन है दूसरे श्लोक आधे श्लोक में उनके गुण का वर्णन। वो गुण ये है यह इंद्र अश्व हर्तारम जिसने इंद्र को क्या किया था, इंद्र ने अश्वहर्तारम अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा के जा रहा था। इसके पिता यज्ञ करे थे, इसका अर्थ ये है। विद्वान अपि, वो बड़े विद्वान थे। विद्वान का यहां अर्थ प्रभुपाद ने लिखा है बड़े उदार थे, बड़े उदार थे। उदार थे तो क्या क्या किया, ऐसे क्या बात उस उदारता की उनमें थी। तब कहते हैं न जघिनवान, मारा नहीं। न जघिनवान का अर्थ है मारा नहीं। तो ये अंतर्धान का गुण है कि इंद्र एडमिनिस्ट्रेटिव डेमीगार्ड है, सारा संचालन चलाने का अधिकारी है और भगवान के द्वारा चुना जाता है इंद्र। हर मनवंतर में एक इंद्र जो मनवंतर के एक अवतार होते हैं वो चुनते हैं। तो ये भगवान जिसको चुन के इंद्र बनाता है, और भगवान कौन चुनते हैं, भगवान के अवतार सारे कहां से आते हैं, सारे भगवान के अवतार कहां से आते हैं, लघु भागवत अमृत में भानु स्वामी से हमने उस दिन सुना कि यहां लिखा है कि गर्भोदक्षाय विष्णु से सारे अवतार आते हैं। प्राय क्षीर सागर पे प्रार्थना करते हैं हमको ऐसे, लेकिन महाराज ने उस दिन कहा कि रूप गोस्वामी पाद ने लघु भागवत अमृत में लिखा है कि सारे अवतार प्राय गर्भोदक्षाय विष्णु से आते हैं। तो सारे अवतार तो विष्णु से आते हैं। अब विष्णु किसी को चुने कि ये सेवा करो तो वो विष्णु का सेवक हुआ ना, तो विष्णु के सेवक को क्या बोलेंगे, वैष्णव। तो इंद्र वैष्णव है ना, कहीं सब सारे देवता वैष्णव हैं क्योंकि विष्णु की सरकार में काम करते हैं। तो एक को इंद्र चुना जाता है, लेकिन उसकी उसका गुण क्या होना चाहिए, उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों। भाई हो सकता है 10-20 ऐसे हों उसमें, लेकिन उनमें से कोई एक चुना जाएगा। जैसे भाई बहुत से लोग एमबीए किए लेकिन चुनना होगा तो एक चुनते हैं, 10-50 में से तो एक इंद्र को चुनते हैं बहुत से में से, लेकिन एक अश्वमेध यज्ञ करना, अश्वमेध यज्ञ तो दूर है, घोड़ा लेना ही मुश्किल है। ये तो घोड़ा घोड़ा करने से ही काम नहीं चलता है, घोड़ा लेना ही मुश्किल है, तो अश्वमेध यज्ञ करना कोई आसान काम नहीं। तो 100 अश्वमेध जो यज्ञ करे वो सत्कृतु कहलाता है। सत का मतलब 100, कर्तु का मतलब यज्ञ। इसलिए इंद्र का नाम, इंद्र का जो टाइटल होता है वो शक्र होता है। शक्र इंद्र को कहते हैं, शक्र मतलब 100 यज्ञ करने वाला। राधा गोविंद महाराज कहते हैं शक्र इसलिए कहते हैं, जैसे कोई आदमी साइन करता है ना अपनी, जो साइन करता है छोटी साइन करता है, तो इंद्र सत्कर्तु की बजाय लिखता है शक्र। तो इसको तो इंद्र भगवान के द्वारा चुना जाता है। आने वाले मनवंतर में कौन इंद्र बनेगा? अभी से निर्धार किया गया है कि आने वाले मनवंतर का इंद्र बलि महाराज होंगे। वो 100 यज्ञ कर रहे थे। तो ऐसे बहुत बड़े प्रतापी ऐसे महापुरुष राजा होते हैं, जो अभी होते सारे राजा हैं, क्योंकि इंद्र जो है वो शासन करने का पद है, एकदम शासक है, उसका काम है शासन करना, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर है। प्रभुपाद जी लिखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर डेमी गार्ड है इंद्र। दो एक दो पहले श्लोकों के तात्पर्य में आपने सुना होगा कि इतना बड़ा बड़े पद के ऊपर बैठा है, लेकिन नीचे जब देखता है कोई और यज्ञ करता है तो उसको अपनी कुर्सी हिलती दिखती है। वो नहीं चाहता है कि दूसरा कोई 100 यज्ञ पूरा कर ले, ये उसको बहुत बड़ी चिंता होती है। रात में सुन रहा था महाराज, राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि वो ऊपर वाले देवता लोग नीचे हमको ऐसे देखते हैं जैसे गटर में कोई कीड़े घूम रहे हैं। हमारी उनकी वैल्यू हमारी उनके सामने इतनी है जैसे गटर में कोई कीड़े घूम रहे हैं, ऐसे हमको देखते हैं ना? उनको कोई हमारा इतना महत्व नहीं है। हम समझते हैं कि हम कोई बहुत बड़े गाड़ी में जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि कोई कीड़ा गटर में घूम रहा है, इतनी वैल्यू हमारी है। अब कोई कीड़ा घूम रहा है उसको लात मार दो के मार दो के उसको, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कभी कभी वो जो है किसी को मार भी दें तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपके सर में ऐसे करो और ऐसे हाथ में कुछ आ जाए बेचारी ऊपर बैठी हुई, तो क्या करते हो? तत्काल उसको ऐसे करके मार देते हो। तो ये तो सारी खुजली है, सारी यह दुनिया इंद्र के लिए जू के समान है। उसको अच्छा नहीं लगता है ये। सो इंद्र घोड़ा चुराने आ जाता है, और भी अंतर्धान का उसने बहुत गलत फायदा लिया। उसको अंतर्धान इसलिए होने के लिए दिया गया है कि जाके देख लो कोई गलत काम करता है तो उसको पकड़ के दंड दे दो, लेकिन अंतर्धान होने से उसने कुछ अपराध किए। 2 दिन पहले आपने सुना होगा एक तात्पर्य में, वो गौतम ऋषि की पत्नी के पास चला गया, अहल्या के पास इंद्र। तो अंतर्धान इंद्र, अब ये तो इस श्लोक का अब तात्पर्य इस अनुवाद पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तो इंद्र, क्योंकि इंद्र विष्णु के द्वारा निर्धारित होता है, इसलिए अंतर्धान इस बात को जानते हुए उसको मारा नहीं, उसको मारा नहीं, ये बात खास बताई गई, उसको मारा नहीं, जबकि उसको मारने का अधिकार था क्योंकि चोरी करके ले जा रहा था, और वो भी यज्ञ का घोड़ा ले जा रहा था। यज्ञ का घोड़ा बहुत पूजित होता है, वो तो यज्ञ की मुख्य पूजन पूज्य पूजा की सामग्री होती है, तो उसका उठा के ले जा रहा था, तो उसको मारा नहीं, ये उसका गुण बताया गया है। तो श्री प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद ये है, महाराज अंतर्धान के नभस्वती नामक एक दूसरी पत्नी थी, जिससे उन्हें हविरधान नामक एक अन्य पुत्र की प्राप्ति हुई। चूंकि महाराज अंतर्धान अत्यंत उदार थे, विद्वान थे, अतः उन्होंने यज्ञ से अपने पिता के घोड़े को चुराते हुए उंद्र को मारा नहीं। ये है अनुवाद, श्लोक का अर्थ ये। अब श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखा है, अनेक शास्त्रों तथा पुराणों से ज्ञात होता है कि स्वर्ग का राजा इंद्र चोरी करने तथा अपहरण करने में अत्यंत दक्ष था। एक बार एक मंदिर में किसी को अध्यक्ष, हमारे मंदिर में किसी ने अध्यक्ष उसको रखा, तो उसने बहुत चोरी करने वालों को पकड़ लिया। तो मीटिंग में कहते हैं, अरे भैया पहले चोरी करता था तब इसको पता था कौन चोरी करता कैसे है, तभी तो पकड़ा होगा, नहीं तो कैसे पकड़ेगा। भाई कोई साधु को बिठाओगे उसको क्या पता लगेगा क्या कर रहे हैं। तो इंद्र अगर ये काम नहीं करे तो चोर और अपहरण वालों को पकड़ेगा कैसे, ये तो उसमें प्रवीण है इसलिए पकड़ लेता है। नहीं ये सच्ची बात है भाई, आप किसी साधु को बिठा दो उसको कोई चोर दिखाई, उसको सभी साधु दिखाई देंगे, चोर कहां से वो देखेगा। जिसने कुछ पहले किया हुआ होगा उसको ही अनुभव होगा ना। तो ये नहीं, ये बहुत बड़ा रहस्य है असल में, सही बात नहीं, हर एक आदमी ये काम नहीं कर सकता। एक नेता था, एक बार चुन गया, दूसरी बार इलेक्शन लड़ रहा था, तब एक प्रवचन दे रहा था। देखो भाई मैं आपसे सच कहता हूँ कि मैंने बेईमानी की, चोरी की, बंगला बनाया, बच्चे को भी बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए, अब मेरे को कुछ आवश्यकता नहीं, अब मेरे को चुन लो, अभी ज्यादा कोई बेईमानी नहीं करूंगा, दूसरा आएगा यही काम करेगा, इससे मुझे ही चुन लो भाई कम से कम। कि मैं पहले ये कर चुका हूँ, तो इसने पहले ये किया अब ज्यादा नहीं करेगा। अब किसका इतिहास में प्रभुपाद लिखे हैं, तो अपहरण किसने किसका किया इंद्र ने, कयादु का, हिरण्यकश्यप की पत्नी को, गर्भवती को ले जा रहा था, और नारद जी ने खड़ा करके कहा, क्या क्या कर रहे हो ये देवराज, गर्भवती स्त्री का अपहरण कर रहे हो। बोला हिरण्यकश्यप की पत्नी है, बोला है तो स्त्री गर्भवती ना, हिरण्यकश्यप के बेटा तो उससे ज्यादा, सांप का बेटा सपोला उससे ज्यादा खतरनाक होगा, जन्म लेती मार दूंगा, बाल हत्या करेगा इंद्र, नहीं तुम्हें क्या पता कि ये असुर होगा, इसको मेरे पास छोड़ के जाओ। और इंद्र ने आज्ञा का पालन किया और छोड़ दिया नारद जी के पास। तो ये कयादु के अपहरण का वर्णन प्रभुपाद ने ऐसे लिखा है। और अपहरण और क्या करता है, चोरी, चोरी तो कई अश्व में घोड़ों को चोरी करता रहता है, किसी को भेजता रहता है, किसी साधु को तपस्या में अप्सरा भेजता रहता है, तो ये सब राजनीति के कार्य हैं, ये तो साम दान, ये तो राजनीति तो ऐसे ही चलती है ना, कि देखो कौन पक्का है कौन कच्चा है, देख तो लेना चाहिए ना। तो असल में ये जो भी, और फिर उसमें तो अहल्या का वर्णन आता है, उसकी वजह से इंद्र को मेघनाथ ने जीत लिया, वो उसका एक अपराध था जिसकी वजह से इंद्र रावण के पुत्र के द्वारा जीता गया, अहल्या क्या तप भंग करने के कारण। सो पहली लाइन में ये लिखा गया है, अत्यंत दक्ष था वो, मालिक की अनदेखे में किसी भी वस्तु को चुरा सकता था, और बिना पहचान में आए किसी की पत्नी को हर सकता था। वो क्या, वो अंतर्धान हो सकता था, इंद्र कैसे भी आ जाए। अब ये भाई राजा महाराजाओं को पहले जैसे वेश बदल के घूमते थे, वो भी अंतर्धान एक तरह से हो गया, क्योंकि पहचाना नहीं जाए। जैसे ऐसे बहुत से भाई, रामचंद्र भी सामान्य वेश में घूम रहे थे अपने राज का समाचार लेने के लिए, तो इनको ये विद्या दी जाती है बुरों को पकड़ने के लिए, तो बुरों को पकड़ते पकड़ते कभी उनका मन फिसल जाता है तो आज बुरा काम भी कर देते हैं। तो भाई बुरों को पकड़ते पकड़ते बुरा काम करना, एक बार फिर और राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि कोई ऐसी बात हुई कि भाई भक्त बहुत अच्छा है, घर भी इसका बन गया है गाँव में अपने, बोला देखो कोयले में काम करने वाला का हाथ काला होता है और घीस में हाथ लगाने वाले का हाथ चिकना होता है। अब जो काम ही पैसा लाने का है तो वो पैसा कुछ तो कहीं लगेगा, हाथ उसका भी चिकना होगा कि नहीं होगा। भाई कहने का जो भाव था वो ऐसा था कि कोयले वाले का हाथ काला होता है, घी वाले का हाथ चुपड़ा होता है। तो ऐसे बहुत, तो जो काम दूसरों पहले चोरी पकड़ने वाला है और अपहर्ताओं को पकड़ने वाला है, कभी कभी चोरी और अपहरण करने की भी आदत उसमें थोड़ी पड़ सकती है। तो जो काम करता है उसकी आदत तो पड़ेगी ही ना, तो इंद्र काम तो उसका यही है ना, तो उसमें ये आदत पड़ गई, कैसे भी ये आदत उसमें पड़ गई, क्या करेगा। अब वो आदत तो पड़ गई, ये इसको इस आदत को क्या, प्रभुपाद के तात्पर्य में से इस आदत को क्या बोला, ये एक्सीडेंटल फॉल डाउन है, ये इस रोज का काम नहीं है इसका। अचानक कभी गुण के प्रभाव से ये सारे प्रायः देवता जो है इनके अंदर प्रधान रजोगुण होता है, है सातों गुण पद सतोगुण का है, लेकिन काम एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है उसमें रजोगुण की प्रधानता आ जाती है, तो कभी कभी उसका प्रभाव हो सकता है। एक बार उसने अपने अंतर्धान बल से गौतम मुनि की पत्नी के साथ बलात्कार किया, इसी प्रकार अदृश्य होकर उसने महाराज पृथु का घोड़ा चुरा लिया। यद्यपि मानव समाज में ऐसे कार्य कुत्सित समझे जाते हैं, किंतु इंद्र ऐसे कार्यों से नीच अर्थात भ्रष्ट हुआ नहीं समझा गया। इसका क्या अर्थ हो जाएगा, प्रभुपाद ने क्या लिखा। अगर कोई जैसे गौतम ऋषि, अहिल्या ब्रह्मा जी ने एक बहुत सुंदर स्त्री बनाई, वो इतनी सुंदर थी, वो गौतम के पास, सभी देवता कहते हैं इससे विवाह करेंगे, सब देवता का मन हो गया कि इसी से विवाह करना है, लेकिन उन्होंने गौतम के पास धरोवर में रख दी और गौतम ने उसका धरोवर को संभाल के रखा, इसलिए ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोला उसको ही तुम्हें विवाह करके देते हैं। लेकिन ये जो इंद्र आदि थे पहले ही उसको चाहते थे, उसने बोला ये तो ठीक नहीं हुआ, हम इंद्र बड़े इतने बैठे थे, वो ऋषि क्या करेगा। तो इंद्र गौतम का ही रूप धारण करके चला गया, उधर अंतर ध्यान में रूप ही बदल के चला गया था। और ये वाल्मीकि रामायण में इसकी कथा विस्तार से है कि जाते हुए इंद्र को गौतम ने देख लिया और पहचान भी लिया और शराब भी दे दिया उसको, सारे शरीर के ऊपर आंखें हैं आजकल इंद्र के, ऐसे कहते हैं सब शरीर के ऊपर आंखें हैं, और अहल्या को कहा पत्थर बन जाओ, अहति नहन, जो दिन में नहीं देखे उसको कहते हैं अहल्या, ऐसे अहनी अहनी लिया, जो दिन में लीन हो जाए दिखे नहीं उसको अहल्या कहते हैं। लेकिन ये इसको क्यों नहीं मानना चाहिए कि ये अपराध नहीं माना जाता है, इसको मानव समाज में ये दोनों अपराध हैं लेकिन इंद्र के द्वारा इसको घृणित नहीं माना जाता, क्यों, ये एक प्रश्न है, क्यों नहीं भरना पड़ा था। किसी का कोई राय है? क्यों नहीं ये घृणित माना जाता, प्रभुपाद जी ने इसमें अपिचेत सुदुराचारों श्लोक लिख के सावधानी का भगवद गीता से साधन दे दिया। अहल्या का उद्धार कैसे हुआ, अहल्या कोई साधन कर रही थी क्या, पत्थर थी ना, फिर भी उसका रामचंद्र ने विश्वामित्र के कहने के ऊपर स्पर्श करके उद्धार किया। तो ये योजनाएं भगवान की लीला में भाग लेने के लिए होती हैं, अथवा भगवान का कोई विशेष गुण प्रकाशित करने के लिए होती हैं। इसलिए कहते हैं कभी कभी भगवान के भक्त अपने ऊपर बुराई लेकर भी भगवान का अभिष्ट पूरा करते हैं, जैसे भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से लड़के भगवान श्री कृष्ण का अभिष्ट पूरा कर रहा था, अभिष्ट पूरा कर रहा था। अगर भीष्म वहां नहीं होता तो लड़ाई नहीं होती, तो ये सब आतिथेय मरते नहीं। ऐसे केकई को एक दिन बैठी हुई केकई को पीछे से राम जी ने आंखें बंद कर दी मैया की, तो मैया ने हाथ से कहा राम हो मैं जानती हूं बेटा प्रिय, बोले एक वचन दो फिर आंखें खोलूंगा। अरे मैया आपको बेटा प्राण ले लो, आप तो भरत से भी मुझे प्रिय हो। मैया वचन वचन बेटा क्या चाहिए मांग लो। तो राम जी ने कहा मैया देखो कौशल्या मेरे अंदर इतना मोह रखती है कि ये काम कौशल्या से होगा नहीं, और मेरे को जब तक 14 साल का वनवास नहीं दिया जाएगा तब तक देवताओं का कार्य संपन्न नहीं होगा, तो मैया ये आपको कार्य करना पड़ेगा। अब केकई ने जो ये राम को वनवास दिया, ये राम की इच्छा थी कि केकई को बुरा कहना चाहिए, इसलिए केकई को विश्व दशरथ ने तो बुरा कह दिया, भरत ने भी कह दिया, वशिष्ठ जी ने भी कह दिया, समंतर ने भी कह दिया, लेकिन राम जी हमेशा कहते हैं जिसने साधु का संग नहीं किया है वो मेरी माता के विषय में ऐसा कहेगा। भगवान ने कभी कभी नहीं कहा, और ऐसे मानते हैं कि जब भगवान वापस लौट के आए 14 साल के बाद तो पहले केकई को प्रणाम किया फिर कौशल्या के कक्ष में गए। तो ये भगवान की इच्छा के लिए कितनी बड़ी बदनामी उसने ले ली। अब दुर्वासा मुनि जाकर अम्बरीश को अगर ये नहीं करता द्वादशी का तो क्या अम्बरीश के वैष्णव धर्म का इतना बड़ा प्रकाशित हो सकता था संसार में क्या? अम्बरीश कितना महान है ये कैसे दुनिया को पता लगता अगर दुर्वासा जाकर वहां ये नहीं करता जो उन्होंने किया। दिति जाके कश्यप को यज्ञ के अंदर पकड़ के नहीं लाती तो प्रहलाद कैसे जन्म लेता? इसका अर्थ है कि हमारे स्तर में हम जो चीजें नहीं देख पाते हैं नहीं समझ पाते हैं हमको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये तो आपने कथा सुनी होगी, भक्त कभी ड्रामा भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गोपाल उसका भक्त एक गोपाल दास, वो कहता है भगवान सारा दिन यहाँ खड़े होते हो, कभी घूम फिर के आओ, गैया चरा के आओ, मैया के पास जाके माखन खा के आओ, सारा दिन खड़े हो मंदिर में पूजा करता था। बहुत बड़ा उसको भगवान के ऐसे खड़े होने पे दुख हुआ। बोला एक दिन घूमने, बोला मैं जाऊंगा तो यहाँ कौन खड़ा होगा, लोग आते हैं रोज पूजा प्रतिष्ठा करने, बोला मैं हूं ना। एक दिन भगवान ने कहा ठीक है तुम खड़े हो जाओ, चलो ये मेरे वेश मेरा तुमको पहना देता हूं, एक शर्त है बोलना बिल्कुल मत। हे गोपाल दास जी खड़ा हो गया, भगवान घूमने चले गए। एक व्यक्ति बहुत बड़ा धनी, धन की बैग हाथ में उठाई हुई आया, प्रणाम किया कि भगवान आपने बड़ी दया की, मेरा काम सफल हो गया, अब एक दूसरे काम पे जा रहा हूं, मुझे बड़ा ठीका मिलना है, मेरे को आशीर्वाद दो, मेरा ठीका मुझको मिलना, प्रणाम किया तो उसका इतना बड़ा पैसे का पर्स गिर गया और छोड़ के चला गया। ये देखा इसने, बोला ये क्या बोला, फिर नहीं मारा है, भगवान ने कहा मत बोलना चुप करके खड़ा है। दूसरा एक बेचारा गरीब साधु आया, कहा भगवान मैं आपका भक्त आपकी सेवा पूजा करना चाहता हूँ, है तो एक रुपया भी घर में नहीं, अच्छा सा मौसम का आम आया है आपको आम अर्पण करना है, कुछ मेरे ऊपर कृपा करो आपकी सेवा पूजा कर सकूं, बच्ची बड़ी हो गई है उसका विवाह करना है। प्रणाम करके ऊपर उठा तो इतना पड़े पैसे का पर्स देखा, बोला भगवान अभी तत्काल आपने हमारे ही तो वर दे इच्छा पूरी कर ली, उठाया पर्स गया घर सीधा, उसने तो अपना भगवान की सेवा पूजा का काम कर दिया। और तीसरा आया, ये बोला नहीं, तीसरा आया, वो नाव में कहीं जाना था बाहर, जहाज में काम करता था, प्रणाम करके कहता है भगवान कल मैं जा रहा हूँ परिवार से, 2 महीने बाहर रहूंगा, मेरे परिवार की मेरे पालन पोषण करना, प्रणाम कर रहा है तब तक पहला पुलिस को लेके आ गया कि मेरा पर्स रह गया यहाँ, और इसी को देखा और बोला इसी ने उठाया और कोई तो है नहीं, इसको पकड़ के ले गए। अब ये खड़ा खड़ा चुप हो गया, फिर ये तो बोला सारा ये उल्टा हो गया। तब तक तो भगवान आकर वापस आ गए, आते ही भगवान ने कहा गोपाल दास अब तुम फ्री हो जाओ, तुमको भूख लगी? बोला भूख को छोड़ो, पहले यहां मुझे बताओ कि ये हुआ क्या, ये तो आपके मंदिर में अंधेर चल रहा है। बोला क्या हुआ गोपाल दास, बात क्या, तो चुप तो रहे ना। बोला मैं तो चुप रहा लेकिन ये चुप रहने जैसी बात है नहीं। बोला क्या हुआ? बोला पैसा पहला आया धन यहां भूल के प्रार्थना करके चला गया। बोला उससे ये धन मैंने इसलिए लिया कि वो जाके कहीं पार्टी में किसी को मांस खिला के शराब पिला के नरक का गामी हो जाता तो मैंने उसका धन उससे ले लिया, तो उसका तो बेचारे का भाव। और बोला फिर दूसरे को, बोला वो अच्छे अच्छे काम में लग गया तो अभी उसको पुण्य मिल जाएगा ना। बोला ये बात तो भगवान समझ में आई, वो तीसरा जेल में क्यों गया इसके कारण? बोला उसकी नाव अखबार में जाके पढ़ो डूब गई है, वो जेल में नहीं होता तो मर नहीं जाता आज। उसको जेल में नहीं डाला होता तो मर गया होता। तो उन्होंने प्रार्थना की, मैंने तो उनकी इच्छा पूरी की, लेकिन अब हम क्या कहेंगे कि पहला दूसरा चोर हाँ तीसरा बेईमानी, हमको तो ऐसे दिख रहा है ना, तो हमारी नजर में कुछ नहीं दिखता है। इसलिए इंद्र ये क्यों काम करता है इसके ऊपर हमको टिप्पणी करने का, जब अंतर्ध्यान को अधिकार नहीं है पृथ्वी के पुत्र को, तो हमको उसके ऊपर अथवा ऐसे महात्माओं के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं है, ये इसका भाव निकल रहा है ऐसे। ये कम से कम भक्तों के लिए बहुत बड़ा सावधानी के लिए ऐसा यहां वर्णन जो मिलता है ऐसे मिल रहा है। किंतु इंद्र ऐसे कार्यों से नीच अर्थात भ्रष्ट हुए नहीं समझा गया। यद्यपि अंतर्धान को पता चला गया था कि राजा इंद्र उनके पिता का घोड़ा चुराए ले जा रहा है, किंतु उसने मारा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि कभी कभी अत्यंत शक्तिशाली पुरुष भी ऐसे घृणित कार्य करते हैं, अतः उसकी ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। गौर किशोर दास बाबा जी को एक दिन भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा मुझे बाबा जी वेश दे दो। गौर किशोर दास बाबा जी वापस गए और एक वेश्या के आंगन में जाके बैठ गए। तो भक्ति विनोद ठाकुर गए सब जगह घर में इधर उधर देखा, मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं। जब शाम हो गई तो बाहर निकल के बोलते हैं आज मैंने केदारनाथ को जो है धोखा दे दिया, तो वेश्या के घर में तो मुझे ढूंढने आएगा नहीं ना। अब कोई देखे के भक्ति के गौर किशोरदास बाबा जी वेश्या के आंगन में बैठा है तो ये तो बहुत बुरा है कि नहीं है, लेकिन वो क्यों गए वहां, वो नहीं देना चाह रहे थे बाबा जी वेश, तो वो दुखने आए घूमने आए। बोला आए अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है कि आज तो हमने केदार जैसे बुद्धिमान को भी चक्कर में डाल दिया कि वो मेरे को कहां ढूंढेगा, या वेश्या के घर में तो ढूंढने नहीं आएगा ना। अब इससे तो यहां प्रभुपाद इधर आके फिर भगवत गीता के अंदर इसलिए कहा है अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अन्न भाक साधुर एव समन्तव्य सम्यक विवस्तो तो ही स, वो सम्यक विवस्त है क्यों है तो सेवा में लगा हुआ ना, वो सेवा में लगा हुआ है लेकिन उससे एक त्रुटि हो गई है जाने अनजाने में प्रभाव। तो क्योंकि आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये तो बेचारा इंद्र है लेकिन कभी ब्रह्मा और शंकर जी तक भी ये प्रभाव हो सकता है, क्योंकि वो इसलिए भागवत के स्कंद पुराण के महात्म में आता है कि तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश श्री कृष्ण से कहते हैं कि ये संसार का कार्य करना है तो वो ऐसे ही कोयले की काम खान में काम करने वाले जैसा है, तो हम कैसे अपने आप को सदा आपके ध्यान में लगा सकें। तो कहा आप भागवत का निरंतर पाठ किया करो, तो 7 दिन में तो ब्रह्मा जी तत्काल पाठ कर लेते हैं क्योंकि रजोगुण का काम है उनका सृष्टि का। भगवान विष्णु 1 महीने में पूरी भागवत का पारायण करते हैं और लक्ष्मी देवी 2 महीने में कर लेती है। शंकर जी को और कोई काम नहीं, 1 साल में भागवत पूरी करते हैं पाठ, पूरा 1 साल लगाते हैं पाठ करने में, उनका पूरा पारायण 1 साल का होता है। तो तीनों ये देव अब देखेंगे तो वैष्णव संप्रदाय ब्रह्मा संप्रदाय भागवत पढ़ता है, शंकर रुद्र संप्रदाय भागवत पढ़ता है, कुमार भागवत पढ़ के आए जाके भगवान बलराम जी से संकर्षण से पढ़ के आए, और चौथा कौन है, लक्ष्मी 2 महीना रोज भागवत पढ़ती है। तो ये चारों भागवत संप्रदाय हैं, ये चारों की चारों वैष्णव भागवत संप्रदाय है, इनमें भागवत का निरंतर पाठ होता है। तो इतने बड़े देव भी निरंतर भागवत का, कल कहीं मैंने उदाहरण दिया था, अगर एक छिद्र वाला मटका आपको मटके में 4-5 मटके में सोराख हो होल हो आपको कहा जाए कि जमुना से भर के आओ तो भर के आएगा क्या? हाँ क्योंकि जैसे उठाओगे तो फिर निकल जाएगा पानी, तो कैसे भरना ही है तो क्या करोगे, बंद करना पड़ेगा, एक बात है, नहीं बंद करने के लिए कोई साधन नहीं है तो बस उसको पानी में ही पड़ा रहे तो भरा रहेगा, खाली थोड़ी होगा भाई, पानी में पड़ा हुआ मटका भरा होगा कि नहीं होगा, तो सत्संग में ही बैठे रहो तो फिर कुछ खराब होगा ही नहीं, तो ये सारा दिन ही हरि कथा में बैठे होते हैं, इसलिए कहीं गड़बड़ होने की संभावना नहीं है। अब कथा में आप बैठ के क्या गड़बड़ कर सकते हो, उठोगे तब किसी का मोबाइल या चप्पल उठाओगे ना बैठे बैठे तो नहीं कर सकते हो ना, तो भाई अंदर ही बैठे रहो ना। तो ये जो जो हरि कथा में ऐसे डूबा रहता है उसके ऊपर माया का प्रभाव नहीं होता है। और ये बड़े लोग कभी किसी विशेष कार्य से करते हो, कहीं पतन भी हो जाए किसी कारण से, तो भी उसको पतन नहीं मानना चाहिए, ये बड़ी सावधानी की बात है। उसके अंदर अच्छाइयां कितनी है वो तो हम देखते नहीं है। तो यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान कहते हैं कि यदि भक्त कुत्सित कार्य भी करे, देखो यहां लिखा यदि भक्त, तो इंद्र भक्त तो है, कुत्सित कार्य किया तो उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की अविचल भक्ति करता है। भगवान के भक्त कभी कभी जानबूझकर कोई पाप कर्म नहीं करते, किंतु कभी कभी पुरानी आदतों के कारण वे कुछ घृणित कार्य कर बैठते हैं। पुरानी आदतों के कारण, एक था चोर, सत्संग सुना, साधु हो गया, साधुओं के साथ सड़क चला आया वृंदावन, अब रात को नींद तो आया नहीं, चोर को रात को नींद नहीं आती, अब क्या करे, सामान किसी का नहीं उठाए तो भी उसके हाथ में खुजली हो रही है, उसने एक साधु की धोती उठा के दूसरे के थैले में रखी, एक का लोटा उठा के दूसरे में रख दिया, सुबह साधु कहते मेरी धोती कहाँ है, मेरा लोटा कहाँ है, ये बोलता तेरी धोती वहां पड़ी है, तेरा लोटा वहां पड़ा है, बोला ये क्यों किया, बोला महाराज चोर हूं, चोरी छोड़ दी लेकिन हेरा फेरी तो करूंगा चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। तो जो पुरानी आदत है वो कैसे भी लेबरक उठा के कहीं नहीं गया, इधर का उधर कर दिया, इतना नहीं करूं तो मैं सो नहीं पाता हूं, मेरा ये मेरी पुरानी आदत है, इसको छोड़ने में मुश्किल है। एक सुनार साधु बना, कोई रोटी दे तो ऐसे करता है 25 ग्राम से ज्यादा नहीं है, इसमें मिक्स बहुत मिलावट लग रही है हाँ, आटे में ये डाल दिया अब सारी उम्र का उसका यही काम था तो पुरानी आदतें जो है कहीं ना कहीं से निकल आती हैं। देखो जप करते हुए भी एक भक्त ऐसे बैठेगा सुहारी, ये पुराना कोई योगी होगा तब उसको ऐसे बैठना आता है, और एक हरि कृष्ण हरि कृष्ण राम 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 हरि हरि, ये कोई पुरानी आदत, कोई भागने वाला होगा, बैठा जाता नहीं तो उसकी वो आदत, वो काम वही हरे कृष्णा जप रहा है लेकिन वो करेगा दूसरे तरीके से, क्योंकि उसकी पुरानी आदत ऐसी है कि उसको ऐसे ही करना आएगा, नहीं तो वो कर नहीं पाएगा। क्योंकि जो जैसे चलती हुई गाड़ी में चढ़ना है तो दौड़ के चढ़ना पड़ेगा, तो उसका दिमाग चलता ही है इसलिए वो दौड़ता है, कम से कम दिमाग के साथ उसको चुप करके खड़ा करके रखे, वो एकांत में नहीं बैठ सकता है। तो ये पुरानी आदतों के कारण जो है हरेक के स्वभाव का थोड़ा थोड़ा प्रभाव उसके भक्ति में भी दिखता है, क्योंकि फिर भी भक्ति में लगा हुआ है इसलिए उसको साधु मानना चाहिए, कि जगह सही पे बैठा है ना। गिर गया गटर में एक आदमी, तो लोगों ने कहा अरे बड़ा तुमसे दुर्गंध आ रही है, लेकिन वो बैठा था नल के नीचे, ऊपर से पानी चल भी रहा था, तो बोला गंदा है, अरे भैया मैं मानता हूं लेकिन देखो बैठा कहां हूं, धुल जाऊंगा कि नहीं धुल जाऊंगा, तो मैं धुलाई का कार्य तो कर ही रहा हूं ना, तो अभी क्या है कि पुरानी आदत है, मैं काम में लगा हुआ हूं। एक हमारा सन्यासी था, प्रचार मेंबरशिप का प्रचार करता था, एक बड़े ऑफिसर के, एक बड़े सेठ के ऑफिस में चला गया, तो बातों में बहुत जरा जिद हो गया, तो भगवान निराकार है भगवान आकार है, उसको क्रोध आया, दे मारा मुक्का, तुम कैसे ऐसे, और शीशा टूट गया। सेठ ने कहा इतने बड़े साथ साधु हो के इतना क्रोध करते हो, शीशा तोड़ दिया। बोला शुक्र करो मैं असली होता तेरा सर फोड़ा होता, ये साधु हुआ हूं इसलिए शीशे तक रुका हूं, जो मेरा पहला स्वभाव था मैं तेरा सर फोड़ दिया होता, ये साधु बनाऊ इसलिए कुछ कम हुआ है, सिर्फ शीशा तोड़ा है। तो ये कोई बेचारा थोड़ी गलती करता है तो सोचना चाहिए कि ये बाहर होता तो कितना बड़ा गिरा हुआ होता, थोड़ा भक्ति करते करते इसमें कुछ सुधार आ गया है, लेकिन वो पुरानी आदत गई नहीं है, कहीं ना कहीं आ रही है, तो इसलिए लगा हुआ है ना बेचारा। इसलिए भगवान दया के कारण कहते हैं ये आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। तो अगर आप उन्हें उसको सुधरने का, उसको आपने सुधरने का मौका नहीं दिया और भगा दिया तो आपने गलत काम कर दिया ना। वो सुधर ही रहा था और आपने उसका तुम निकल जाओ तो वही काम करेगा जो पहले कर रहा ना, इसका मतलब आपने अपराध कर दिया ना, एक आदमी को भगवान की सेवा से वंचित कर दिया। एक सेठ नौकर को निकालते नहीं थे, बेटा जब बड़ा हो गया तो बोला पिताजी ये रोज का 10 रुपया तो खा जाता है। बोला मुझे मालूम है, दूसरे को रखूंगा 100 खा गया तो 10 वाले का मुझे पता तो है ना कम से कम कि इससे ज्यादा नहीं करता, इसमें ये संतुष्ट है, दूसरा आएगा कहीं मुझे मार के सारा ले जाए तो ये विश्वास पात्र, इसको रहने दो, इसको नहीं भगाओ। वैसे इसको बोनस देते हैं, बोनस 10 रुपये आप समझ लो बोनस दे रहे हैं। तो ऐसे भगवान कहते हैं कि ये बाहर जाएगा तो और बिगड़ जाएगा, यहाँ तो पड़ा हुआ है ना। वैसे भी बताओ कि अस्पताल में कोई ठीक ठाक आदमी जाता है क्या, बीमार जाता है ना। बोला गाड़ी गैरेज में कौन सी जाएगी, जो नहीं चलेगी वो जाएगी ना। तो यहाँ मंदिर में कौन आएगा बेचारा, जो बेचारा दुखी होगा वही आएगा ना, जो परेशान होगा वही आएगा। फिर अभी आपको यहाँ परेशान नहीं रहो तो और कहाँ जाए फिर भाई, परेशान होगा तब आया होगा ना। ये तो भाई ऐसी जगह है जहाँ आदमी शांति के लिए आता है, दुखी होगा तब शांति चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं त्रुटियां सब में होती है, तो त्रुटियों को न देख कर उसको उसकी अच्छाई को इतना प्रोत्साहन देना चाहिए कि उसकी त्रुटियां आस्ते आस्ते निकल जाए, ये इसमें भाव दिख रहा है। सो यहाँ किंतु कभी कभी पुरानी आदतों के कारण ऐसे कार्यों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्त चाहे इसी लोक में हो या स्वर्ग लोक में अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। यदि किसी कारण वे कोई घृणित कार्य कर बैठते हैं तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए अपितु उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। यहाँ कथा समाप्त होती है। अब इसका आप अर्थ कैसे निकालते हैं, आप जाने अंतर ध्यान महाराज तो राज छोड़ के चला गया, आप यहाँ क्लास छोड़ के प्रसाद खाने चले जाइए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा? पुराने इंदर की कौन ही पुरानी थे, पहले तो बताया गया वो चोरों को पकड़ते पकड़ते थोड़ा चोर हो गया उसको। ये कौन सा इस वक्त कौन सा इंदर है, पुरंदर है, कौन सा है? पुरंदर है ना, पुरंदर इस वक्त इंदर है। हाँ